मेरे आत्मीय युवा मित्रों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का नमस्कार। दोस्तों, आज 18 जनवरी 2018 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 8 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 11 से 25 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन नौजवान साथियों के नाम हैं रविंद्र सिंह तंवर, जयपुर राजस्थान से, श्वेता चौहान, भिलाई छत्तीसगढ़ से, अशोक कुमार, माजरा कैथल हरियाणा से, रमन सिंह, भिवानी हरियाणा से, वीरेंद्र दास, कुशीनगर उत्तर प्रदेश से, जितेंद्र, हैदराबाद तेलंगाना से, बंती सिंह, मान सरोवर जयपुर राजस्थान से, और राम निवास वर्मा, बलरामपुर उत्तर प्रदेश से। तो रविंद्र, श्वेता, अशोक, रमन, वीरेंद्र, जितेंद्र, बंती और राम निवास, आप सभी 8 साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, इस स्वागत के साथ ही मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, निर्देश है, अनुरोध है, आप सब जिस रूप में भी इसे लेना चाहें, और खासकर उन स्टूडेंट्स से है जो 11 मार्च की क्लास के लिए यहां आ रहे हैं। 11 मार्च के दिन हम सब एक दूसरे के आमने सामने होंगे और जिस दिन की प्रतीक्षा हम सब कर रहे हैं मिलकर, उसका वह अंतिम क्षण होगा। मित्रों, अगर आपने आज का लाइफ मैनेजमेंट सुना हो तो उसमें मैंने आई के बारे में कुछ बातें की हैं। आई यानी कि मैं यानी कि अहम। दोस्तों, उसमें मैंने संकेत दिया था और मैं यहां आप सबसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज अब आप अपने अंदर में बदलाव लाने की शुरुआत कर दें। हालांकि मैं मानकर चलता हूं कि अगर आप मेरे इस लाइफ मैनेजमेंट को और डेली ऑडियो लेक्चर को रेगुलर तरीके से सुन रहे होंगे तो वह बदलाव डेफिनेटली आने शुरू हो चुके होंगे। मुझे आपसे जो चाहिए, देखिए, आप मुझसे बहुत कुछ लेने आ रहे हैं और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं उसमें कोई कोर कसर उठा न रखूं। मैं हर कुछ जो भी दे सकता हूं, जिसके भी लायक हूं, आपको देने की कोशिश करूंगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या आपकी तरफ से भी मुझे लेने की पूरी कोशिश हो रही है, इसका आभास होगा? मुझे भी वह दिखाई देना चाहिए कि हां, जिन्हें मैं दे रहा हूं, देना चाह रहा हूं, वास्तव में वो लेना चाह रहे हैं और पूरी गंभीरता के साथ लेना चाह रहे हैं, और साथ ही साथ उन्होंने अपने को इस लायक भी बना लिया है कि मैं अगर उन्हें कुछ दूंगा तो वहां रुकेगा। मुझे वो जगह दिखाई देनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं इसके बारे में और आगे चल करके आप लोगों से अब बातें करता रहूंगा, लेकिन जिस जगह की मैं बात कर रहा हूं कि मुझे दिखाई देनी चाहिए, वह जगह है कि आप अपने को खाली करके आए। आप ये सोचकर ना आए कि आप बहुत कुछ जान रहे हैं, अब देखते हैं कि वहां और क्या जानते हैं। बस आप ये सोचकर आए कि नहीं, आप कुछ नहीं जानते हैं और वहां जो बताया जाएगा उसी से शुरुआत होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जो जानते हैं उसको भुला कर आए, वो तो संभव ही नहीं है। मैं केवल ये कह रहा हूं कि अपनी मानसिक स्थिति को ऐसा बनाएं जिसको आप कह सकते हैं सरल, सहज, या अपने अंदर एक वैक्यूम का निर्माण करें। और आगे आप ऐसा कैसे करेंगे, धीरे धीरे हम इसके ऊपर भी अब बात करना शुरू करेंगे। तो मित्रों, अब इस अनुरोध के बाद अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और मुख्य विषय का आज हमारा जो टाइटल होगा वो होगा आई क्रिएट। हम इस पर बातें करेंगे, लेकिन इससे पहले हम थोड़ी सी दूसरी खबरों को देख लें। दोस्तों, न्यूज में आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री जी ने हमारे कहा, अभी इसराइल के प्रधानमंत्री आए हुए, और आप देख रहे हैं कि भारत और इसराइल के संबंधों को लेकर के खूब चर्चा हो रही है, अखबारों में भी खूब आ रहा है, चैनल्स पर भी खूब है, और होना भी चाहिए क्योंकि एक बड़ी बात है। बड़ी बात इस मायने में नहीं कि हमारे दोस्ताना संबंध विकसित हो रहे हैं, बल्कि सही पूछे तो इस मायने में कि एक करोड़ से भी कम आबादी वाले देश के इन लोगों ने पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर रखा है, पूरी दुनिया को रास्ता दिखा रहे हैं डिफेंस के मामले में। और सबसे बड़ी जो बात है आश्चर्यजनक है, जो खुद मैं आश्चर्यचकित रह जाता हूं, वो एग्रीकल्चर के फील्ड में, जहां पानी नहीं है, जहां जमीन नहीं है, वहां एग्रीकल्चर हो रहा है, एग्रीकल्चर में भी फूलों की खेती हो रही है। तो दोस्तों, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकी की आवश्यकता है भारत को। इस पर आप लोगों को विचार करना चाहिए, क्योंकि आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। हमारे सामने चुनौती यह है कि हमारी 57% आबादी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, और उनका जीडीपी में टोटल कंट्रीब्यूशन 14-15% है, तो उनका आर्थिक स्तर जो है वो कमजोर तो होगा ही। अब सवाल यह है कि हम इनकी आय बढ़ाएं कैसे? जमीन का रकबा हम बढ़ा नहीं सकते, जमीन कहां से आप क्रिएट करेंगे, वो संभव नहीं है। तो हमारे पास एक ही तरीका रह जाता है कि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी अपनाएं। आप देखिए कि भारत 57% एग्रीकल्चर में लगे हुए भारत की पॉपुलेशन, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में आप जाकर के देखिए 2-4% केवल इतनी ही पॉपुलेशन एग्रीकल्चर से लगी हुई है, और वो इतना अनाज उत्पादन कर रहे हैं, अनाज का उत्पादन कर रहे हैं कि उनको एक्सपोर्ट करना पड़ रहा है, भेज रहे हैं दुनिया को। यानी कि जो तकनीक है, आधुनिक तकनीक, उसमें यह संभावना है कि भारत अपनी उत्पादन क्षमता को बहुत अधिक बढ़ा सकता है, और डेफिनेटली इसमें इजराइल भारत के लिए बहुत सहायक हो सकता है। और अभी जो समझौते हुए हैं उसमें आप देख रहे हैं कि इजराइल ने इस तरह की बातें की भी हैं। तो मित्रों, ये एक छोटी सी बात थी जो मुझे आपको बतानी थी। दूसरी जो बात है फ्रेंड्स, अगर आपने कल डीडी न्यूज सुनी हो, और एक बार फिर से मैं पूरी विनम्रता के साथ आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मित्रों, आप सबको डीडी न्यूज सुनना ही चाहिए, डीडी न्यूज सुननी ही चाहिए। ज्यादा ज्यादा आप शनिवार रविवार को छुट्टी मना सकते हैं, क्योंकि उस दिन कुछ खास नहीं होता, न्यूज का समय भी घटा दिया जाता है, लेकिन बाकी दिन के आपको डीडी न्यूज सुनने ही चाहिए अगर आप सच में सिविल सर्विस की सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं तो, अन्यथा फिर वो आपकी अपनी च्वाइस है। उसमें कल एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर बातचीत हुई, और वो टॉपिक था कि रायसीना संवाद, जिसके बारे में मैंने कल आपसे बात की, रायसीना डायलॉग, क्या इस डायलॉग का, जिसको अभी केवल 3 साल ही हुए हैं, 2016 से ये शुरू हुई है, हमारी जो विदेश नीति है इस पर कोई इम्पैक्ट है, या आप यूं कह लीजिए कि क्या हमारी विदेश नीति इससे प्रभावित होगी, या हमारी विदेश नीति इससे आगे बढ़ेगी। मतलब वो बहुत अच्छा डायलॉग था, और उसमें जो एक बातचीत करने के लिए आए थे वो तो खुद फॉर्मर डिप्लोमेट्स थे, फॉरेन हमारे राजदूत रहे थे। मित्रों, उसमें जो बातचीत हुई उसमें उन्होंने कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए। मुझे लगता है कि अब ये एक नया विषय इमर्ज हो रहा है, नया विषय इस रूप में इमर्ज हो रहा है, आप अपने सिलेबस को उठा करके देखिए तो इंटरनेशनल रिलेशंस आपके सिलेबस में है, और इंटरनेशनल रिलेशंस से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पड़ोसी मुल्कों के बारे में ज्यादा होते हैं, ठीक है। लेकिन अब चूंकि रायसीना डायलॉग 3 साल, ये तीसरा साल है, तो अब कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो हमारी विदेश नीति पर इसका पड़ने लगेगा, या कह लीजिए कि हमारी विदेश नीति का ही एक अंग है ये। अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाता है 200 शब्दों का, तो सवाल यह है कि आप उसके उत्तर लिखेंगे कैसे। तो मित्रों, इसमें वो जो कल का प्रोग्राम था ये आपकी बहुत मदद कर सकता है। मैं आपको क्लू केवल इतना बता सकता हूं कि इस रायसीना डायलॉग में 90 देशों के 150 प्रतिनिधि आए थे, वैसे तो 500 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन 90 देश के 150 प्रतिनिधि, राइट, यानी कि 90 देश वहां मौजूद हैं, 200 में से मोटे तौर पर 90 देश वहां हैं, और इन 90 देश के बीच में हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे जो एकेडमिशियंस हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं, अपनी कंट्री की बात रख रहे हैं। इसका मतलब है कि हम अपने एजेंडा को, अपने विचारों को दुनिया के 90 देशों के सामने पहुंचा रहे हैं। इससे अच्छा फोरम और क्या हो सकता है? अखबारों के माध्यम से पहुंचना, घटनाओं के माध्यम से पहुंचना, वो उतने मायने नहीं रखते जितना कि एक एकेडमिक फोरम पर हम अपनी बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और इसमें निश्चित रूप से ये जो फोरम है, मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पर, एज ए स्टूडेंट मैं बता सकता हूं कि भारत को एक तरह से विश्व लीडरशिप प्रदान करने का एक बहुत महत्वपूर्ण मंच ये हो सकता है, कि मतलब भारत की भी बात सुनी जा रही है, और जो वर्ल्ड के सामने चैलेंजेस है, भारत अपने चैलेंजेस की बात नहीं करता, जो विश्व के सामने चैलेंजेस है, ऐसे इश्यूज उठाए जाते हैं। तो मित्रों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर जब भी आपको कहीं कुछ पढ़ने को सुनने को मिलता है तो प्लीज आप उस पर ध्यान दें। दोस्तों एक मैं आपको छोटा सा एक डेटा बता रहा हूं, एक उपयोगी डेटा हो सकता है, बीच बीच में अब मैं ऐसा किया करूंगा कि एक डेटा मुझे मिला है कि सन 1985 तक जैसे भारत और चीन में कॉम्पिटिशन होता है राइट, तो एक बहुत अच्छा डेटा है कि 1985 तक स्थिति यह थी कि भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो चीन से भी बड़ी थी। 1985 ज्यादा साल नहीं हुए हैं, चीन से बड़ी थी। और आज हम किस स्थिति में हैं कि हमारी तुलना में चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो 5 गुनी अधिक हो गई है, 5 गुनी अधिक हो गई है राइट। इसके पीछे क्या कारण है, किस तरह की बातें हैं, उसको लेकर के करंट कंटेंट में कुछ दिनों में आपको आर्टिकल पढ़ने को एक मिलेगा, तो आप उसे जोड़ लीजिएगा। लेकिन एक बड़ा खूबसूरत डेटा है अपनी बात को तर्कपूर्ण तरीके से रखने का, तो आप चाहें तो आप इसे नोट कर सकते हैं कि 1985 में हमारी अर्थव्यवस्था चीन से बड़ी थी, लेकिन आज हमारी अर्थव्यवस्था से चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो लगभग 5 गुनी बड़ी हो गई है। मित्रों अब आइए मैं थोड़ा सा आई क्रिएट पर कुछ बातें करूं जो आज का हमारा मुख्य विषय है। आई छोटा है इसके बाद क्रिएट, याद रखिए वो कैपिटल लेटर में नहीं है, आई छोटा है, फोर्थ कैपिटल लेटर है। वो एक बेसिकली केंद्र है, ये एक संस्थान है, और इस संस्थान का उद्घाटन कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने, साथ में हमारे बेंजामिन साहब भी थे इसराइल के, और अहमदाबाद के पास एक जगह है वहां इसका उद्घाटन किया गया, धोरेला गांव या जो भी है, अहमदाबाद के बिल्कुल पास में ही है। जो आई क्रिएट है इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सेंटर, नाम में ही देखिए काफी चीजें रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, क्लियर हो जाता है, इंटरनेशनल सेंटर मतलब अंतर्राष्ट्रीय विश्व स्तर का है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटरप्रीनियरशिप यानी कि उद्यमिता है ना, जो उद्यम करना चाह रहे हैं, जो व्यापार के क्षेत्र में इंडस्ट्री के क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, उद्यमिता एंड टेक्नोलॉजी, ये इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी या टेक्निकल फील्ड में वो कुछ करना चाह रहे हैं। अब आप देखिए कि आई क्रिएट जो शब्द है वो और किस तरीके का रिफ्लेक्शन यहां दे रहा है। क्रिएट का मतलब है बनाना, बनाने को आप यहां जोड़ दीजिए कि कुछ नया बनाना, कुछ नया करना। अब ये कुछ नया बनाना या जो कुछ नया करना है ये कैसे आएगा, इसे ही हम आजकल की प्रचलित भाषा में कहते हैं इनोवेशन, इनोवेशन है ना, नवोन्मेषता, नवाचार, कि हम कुछ नया करना चाह रहे हैं। अब सवाल यह है कि नया करेंगे कैसे। मित्रों नो डाउट कि जो नए की शुरुआत होती है एक आइडिया से होती है, मतलब दिमाग में एक विचार आता है। अब सवाल यह है कि दिमाग में विचार तो आ गया, लेकिन अब इस विचार को साकार कैसे किया जाए, इसको कन्वर्ट कैसे करें कि वो एक रूप ले ले। तो ये जो सेंटर है मूलतः जो आई क्रिएट है वह केवल उस विचार को साकार करने में लोगों की मदद करेगा, आप सामान्य रूप में इसे समझ सकते हैं। ये बिल्कुल ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, मतलब आप यूं कह लीजिए कि स्वायत्त संस्थान है। ये करेगा कैसे, पहले तो विचारों की पहचान करेगा कि नहीं नहीं ये जो विचार है ये सही लग रहा है। जब उसको विचारों की पहचान हो जाएगी तो फिर वह उनका पोषण करेगा, पहले आइडेंटिफाई करेगा फिर उसको नर्चर करेगा, यानी कि उसको अब आगे बढ़ाने के लिए जो आपको सहूलियतें चाहिए वो सहूलियतें देगा, यानी कि उपकरण जो भी चीजें चाहिए, धन, वातावरण, स्थान, वो आपको प्रोवाइड करेगा, और इसके बाद फिर आपको जरूरी सलाह भी देगा, मेंटर का काम भी करेगा, ताकि वह जो आपके जो आपका जो विचार है वह विचार सामने आ सके, नवाचार का रूप ले सके। मित्रों इजराइल की यही सबसे बड़ी खासियत है, इजराइल अभी पूरी की पूरी दुनिया में इनोवेशन के मामले में टॉप पे चल रहा है, टॉप पे चल रहा है। तो ये जो सेंटर है आप यूं कह लीजिए कि बेसिकली जो हमारे अंदर जो इनोवेशन है, और उससे भी बड़ी बात है कि जो इमेजिनेशन है उनको बढ़ावा देने का काम करेगा, और ये मान करके चलिए कि आने वाला जो वक्त है, जो भविष्य है, वो उन्हीं राष्ट्रों के हाथ में होगा जिनके यहां इनोवेशन होंगे। सबसे बड़ा चाहे वो आर्थिक आधार हो, चाहे वो सामाजिक आधार हो, उसका जो केंद्र होगा वो वैज्ञानिक आधार ही होगा, इनोवेशन है। और ये मान करके चलिए कि भारत में इनोवेटिव माइंड की कमी नहीं है, जो सबसे बड़ी कमी है वो है कि उसके लिए फैसिलिटीज नहीं मिलती। इसीलिए आप देखें कि सीवी रमन वगैरह जो हमारे वैज्ञानिक हुए, उन्हें यहां करने के लिए कोई सुविधा नहीं मिली, ये सब अमेरिका गए, दूसरे देशों में गए। अमेरिका जाने के बाद वहां उन्हें सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की और वहां जाने के बाद उन्होंने अपने रिसर्च किए और फिर नोबेल प्राइज भी लिया। इसका मतलब है कि हमें एक ऐसे संस्थान की बहुत ज्यादा जरूरत है जो पूरी तरह से इसी काम को डेडिकेटेड हो। तो मित्रों, ये थोड़ा सा मैंने आपको आई क्रिएट के बारे में बताया है, मुख्य विषय के बारे में बस अब इतना ही। जहां तक न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स का सवाल है, वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, आप लोग अपने अपने ढंग से देख लेंगे। मित्रों, अब मैं आता हूं आज के ईमेल पर। सभी ईमेल लिखने वाले मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आप में से ही कुछ दोस्तों के नाम हैं, जी वी नागलक्ष्मी हैदराबाद से, अर्पिता पटना बिहार से, ओमनी सिंह, हर्षिता गुप्ता उन्नाव उत्तर प्रदेश से, प्रतीक कुमार श्रीवास्तव, प्रियांशु मोदानवाल, विपिन कुमार सिंह सोनपुर बिहार से, पवन कुमार ब्रह्मपुर बिहार से, हसीब अहमद देवरिया उत्तर प्रदेश से, और आशीष कुमार पांडे सहीजाना मध्य प्रदेश से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।